श्रील प्रभुपाद जी भी भगवद्गीता यथारूप प्रस्तुत किया। तो कभी कभी लोग जब इसको इसका जो शीर्षक है श्रील प्रभुपाद जी ने जो भगवद्गीता प्रस्तुत की है उसका शीर्षक देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये यथारूप मतलब क्या है, ये ऐसा पूछते हैं ना। तो अभी हम लोग उसको चर्चा करेंगे, भगवद्गीता यथारूप। भगवद्गीता यथारूप तो 20वां टॉपिक। तो हमारे संस्था में एक डिवोटी है, वो पहले बहुत सारे उन्होंने गीता के व्याख्याएं पढ़ ली थी, फिर उसके बाद में हालांकि वो संतुष्ट नहीं हुए लेकिन वो पढ़ते रहे। बाद में वो उनको ये भगवद्गीता यथारूप मिला तो वो शिक्षक को देखकर ही वो आश्चर्यचकित हो गए, क्या है भगवद्गीता यथारूप का अर्थ क्या है। फिर जब ये भगवद्गीता यथारूप उन्होंने पढ़ लिया उनके सभी जो प्रश्न थे जीवन में तो सबका हल उनको मिल गया, उपाय मिल गया। तो श्रील प्रभुपाद इसके बारे में बोलते हैं भूमिका में कि जब श्रील प्रभुपाद ये भगवद्गीता यथारूप प्रस्तुत किए उससे पहले भी बहुत सारे व्याख्यान थे, जैसे हम उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो कम से कम 600 व्याख्यान थे भारत में और पाश्चात्य देश में दोनों जगह पर। तो श्रील प्रभुपाद इसलिए वर्णन करते इतने सारे व्याख्यान है भगवद्गीता के ऊपर, फिर एक और ग्रंथ का क्या जरूरत है, ऐसे श्रील प्रभुपाद पूछते हैं, है ना। ये प्रश्न उठता है ना मन में, और क्यों लिखना चाहिए इतने सारा है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो भी उपलब्ध है जो मार्केट में वो क्या है, जो प्रस्तुतकर्ताओं ने अपने ही मनगणित कुछ धारणाओं को या मत को प्रस्तुत किया है उसमें। तो हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा किया कि कैसे लोग अपना ही मत उसमें प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि एक नया मतलब वो पारंपरिक ज्ञान है वो, तो उसको यथारूप प्रस्तुत करें। तो यथारूप का क्या अर्थ है, जैसे भगवद्गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। वो निष्कर्ष है गीता का, हम लोगों ने चर्चा किया कंक्लूजन, भक्ति क्या है, भगवान को समर्पण करना या भगवान को शरणागत होना और भक्ति, भगवान को भक्ति करना, मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे, ऐसे भगवद्गीता में भगवान कहते हैं। तो ये हम लोगों ने चर्चा किया कि ये कंक्लूजन है। हम लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि क्यों अन्य विषयों के बारे में भगवान बताते हैं, भक्ति कंक्लूजन है, भगवान को शरण में जाना ही निष्कर्ष है, तो क्यों अन्य विषयों के बारे में भगवान चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने कई कारण देखा ना कि भगवान एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से वो विश्लेषण करना चाहते थे कि कैसे भक्ति श्रेष्ठ है। और हम लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कोई आके हम लोगों को, कुछ भक्तों को विशेष करके जो भगवान के भक्त है उनको कोई आके कुछ और प्रचार करना शुरू कर देता है तो हम अपने आप को रक्षा कर सकते हैं। और भक्ति को बहुत ही भगवान गुणगान करना चाहते थे। तो ये इसके कारण तो बहुत सारे ये सब चीज, और वास्तव में जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सब जगह हर एक अध्याय में निष्कर्ष वही है भक्ति। तो यथारूप का अर्थ है कि भगवान के इस, जैसे भगवान ने ये निष्कर्ष दिया है, सार दिया है कि उनको भक्ति करना चाहिए, जो ये प्रचार करते हैं वो भगवद गीता, या जो ये प्रस्तुत करते हैं भगवद गीता में वो भगवद गीता यथारूप। जैसे प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे ना कि भगवान कहते हैं सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और हम कह रहे हैं सब लोग भगवान कृष्ण को शरण में जाओ। इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। आप ऐसे बोल देंगे कि सब लोग मुझे शरण में आ जाओ, फिर क्या हो जाता है? वो अंतर हो जाता है। तो इसका अर्थ है यथारूप, भगवद गीता यथारूप प्रस्तुत करना। तो यथारूप मतलब वो परंपरा में आता है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो परंपरा में जो गुरु आते हैं या जो महान भक्त आते हैं, उनको हृदय में ये सभी ज्ञान प्रकाशित करते हैं। या दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त है, परंपरा में आते हैं, वो लोग भगवान के हृदय को समझ, क्या हम लोगों को देना चाहते हैं इस भगवद गीता के द्वारा, तो वो ऐसे भक्त ही समझते हैं। क्योंकि यही चीज बताया है भगवद गीता में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपः। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद आरंभ में वो परंपरा भी वर्णन करते हैं। तो ऐसे परंपरा में ये ज्ञान यथारूप का ज्ञान प्रकट हुआ। तो आप प्रभुपाद जी वो उदाहरण देते थे ना फल, वो भागवत के बारे में है, वो श्रीमद् भागवतम को एक फका हुआ फल के समान तुलना किया गया। वो सीधा गिर गया तो क्या हो जाता है? वो नष्ट हो जाता है, लेकिन एक हाथ से ऐसे आ गया तो वो सही सही हमें पहुंच जाएगा। ऐसे हम लोग यहाँ पर स्विच में डाल देते हैं, बीच में कहीं पर खट है तो हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत शक्ति, बिजली का शक्ति नहीं मिलेगा हम लोगों को। तो वैसे ही भगवान वो एक जनरेटर के समान। तो और या तो उनको तो ये परंपरा में हम लोग जान सकते हैं। तो इसलिए ये भगवद गीता यथारूप है, ये परंपरा का ज्ञान है, जैसे भगवान ने कहा वैसे ही प्रस्तुत किया गया है। तो एक और चीज कि हर एक जनरली साधारणता क्या होता है, अन्य भगवद गीता में जो अनुवाद है वो ठीक रहता है। तो जैसे प्रभुपाद वो ये भगवद गीता यथारूप उन्होंने 68 में प्रस्तुत किया, उन्होंने 1968 में। उससे पहले 2 साल, उससे पहले जो आप देखेंगे प्रभुपाद जी जब वहां पर गए 1975-65 में और 67 में, वो आप लीलामृत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वहां पर, कि वहां पर एडवर्टाइज है, वो जाहिरात है, भगवद गीता क्लासेस ऑन वेनसडे फ्राइडे संडे, ऐसे दो बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन और रविवार के दिन, ऐसे बोर्ड लगाते हैं प्रॉपर, और लोग उसको देखकर वो उनको सुनने के लिए आते हैं। 2 साल ये भगवद गीता यथारूप प्रस्तुत करने से पहले प्रभुपाद जी वो राधा कृष्ण का भगवद गीता उपयोग करते थे, तो राधा कृष्ण का ही वो भगवद गीता से वो पढ़ते थे, अनुवाद वगैरह। सोचिए कि वो अपने भगवद गीता पहले तो प्रभुपाद जी ने लिखा था 1940 उस समय पर, लेकिन आपको पता है ना वो खो गया भगवद गीता, वो अभी प्रिंट नहीं हुआ था, होने वाला था, प्रिंटिंग के लिए भेजने वाले थे प्रभुपाद, तभी खो गया वो। तो ऐसा शंका भी है, उनके पत्नी ने उसको चाय और क्या है बिस्किट खरीदने के लिए उसको भेज दिया करके पेपर वाले को, तो ऐसा शंका है। तो ऐसा ही होता है। या क्या हम क्या चर्चा कर रहे थे कि लेकिन वो लोग जो टीका करते हैं, व्याख्या करते हैं, वो सब गलत रहता है। उसका कुछ आधार नहीं रहता, कुछ शास्त्र के ऊपर आधार नहीं रहता। यथारूप का अर्थ है हम जो भी व्याख्या करते हैं वो जो प्रमुख सार है उससे वो विमुख नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? भगवद गीता का सार है भगवान के शरण में जाना या भगवान का भक्ति करना, उससे विमुख नहीं होना चाहिए या पथभ्रष्ट हो नहीं होना चाहिए। वो पहला चीज है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बार बार वो लिखते हैं वहां पर सब जगह कृष्ण के बारे में लिखते हैं वो। हालांकि कर्मयोग के बारे में हो लेकिन प्रभुपाद वहां पर कृष्ण भावनामृत के बारे में ही लिखते हैं, ताकि हम लोग जो मूल सार है, सेंट्रल थीम, जो केंद्र है भगवद गीता को, उससे हम लोग कभी पथभ्रष्ट ना हो जाए, कहीं और वहां पर स्टक अटक नहीं जाए बीच में। ऐसे श्रील प्रभुपाद कृपा करके हम लोगों के ऊपर क्या करते हैं, वो जो भगवान जो प्रस्तुत करना चाहते थे अंत में जो सार रूप में, उसको ही सब जगह वहां पर हम लोगों को देते हैं। कभी कभी ऐसा भी आपका अनुभव रहा होगा ना, जब आप यू नो पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं तो लोग पूछते हैं क्या आपका स्वामी जी सिर्फ कृष्ण के बारे में लिखते हैं सब जगह या भक्ति के बारे में लिखते हैं? क्योंकि वही चीज है अंत में, भगवान वो चाहते हैं भगवद गीता यू नो सुनाकर कि हम लोग भक्ति के बारे में या उनके बारे में जान सके जाने। तो इसलिए प्रभुपाद ये जो पॉइंट है उससे हमें विमुख होने के लिए नहीं देते। ऐसे कई सारे लोग व्याख्या करते हैं, टीका करते हैं, समझने के लिए कोशिश करते हैं, फिर भी तो वो लोग बीच में कुछ अटक जाते हैं। एक ए पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि जो भी लिखते हैं, व्याख्या करते हैं हम लोग, वो भी क्या है, शास्त्र के आधार पर होना चाहिए, है ना? अंत में आप देखिए, इट इज गिवन हियर इन दिस एविडेंसेस रेफरेंसेस फॉर ऑल द रेफरेंसेस। दे आर नॉट गिवन इन हिंदी। न्यू न्यू बुक सो अंग्रेजी में है वो प्रभुपाद। या अंत में यहाँ पर वो दिया गया है कि प्रभुपाद जी के व्याख्याएं कौन कौन से ग्रंथ के आधार पर थे वो। वेरी गुड। या अमृत बिंदु उपनिषद, अथर्व वेद, भक्ति रसामृत सिंधु, ब्रह्म संहिता, ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र का अर्थ है वेदांत सूत्र, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहद विष्णु स्मृति, बृहन नारदीय पुराण, चैतन्य चरितामृत, छांदोग्य उपनिषद, गर्ग उपनिषद, गीता महात्म्य, गोपाल थापनी उपनिषद, हरि भक्ति विलास, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, कौशीतकी उपनिषद, कूर्म पुराण, मध्यंदनीय श्रुति, मध्यंदी नायन श्रुति, महाभारत, महा उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मोक्षधर्म, मुंडक उपनिषद, नारद पंचरात्र, नारायण उपनिषद, नारायणीय निरुक्ति, निरुक्ति मतलब यो शब्दकोश है संस्कृत, नरसिंह पुराण, पद्म पुराण, पराशर स्मृति, प्रश्न उपनिषद, पुरुष बोधनी उपनिषद, ऋग्वेद, सात्वत तंत्र, श्रीमद् भागवतम, स्तोत्र रत्न, सुबल उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, उपदेशामृत, वराह पुराण, वेदांत सूत्र, विष्णु पुराण, योग सूत्र। कभी कभी ऐसा भी होता है लोग इन सभी ग्रंथों से भी उल्लेख करते हैं फिर भी गलत अर्थ दे देते हैं उसको, है ना? ऐसा भी हो सकता है। इसलिए वो जो मूल केंद्र है भगवान को शरण जाना, उससे कभी भी इन इन शास्त्रों को उल्लेख करके ही सभी वहीं पर आना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम लोग बाद में लेंगे, लिख लीजिए उसको। भूमिका निकालेंगे अभी। आरंभ में भूमिका आरंभ होता है ना, वो सभी प्रार्थनाएं होने के बाद, तो पढ़िए उसको। निस्संदेह भगवद गीता पर, ललिता, दो ललित, निस्संदेह भगवद गीता पर
निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त है।
मिल गया, कहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग? भूमि के भूमिका के पहला पैराग्राफ में है हम लोग। वो मंगलाचरण खत्म होता है ना, पहला पैराग्राफ शुरू होता है सेकंड लाइन।
निस्संदेह भगवद गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त है, अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवद गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाहिए।
समझ में आ गया? वो एक महिला आती थी प्रभुपाद जी को भगवद गीता प्रवचन सुनने के लिए। उन्होंने पूछा, मुझे एक कोई एक क्या है भगवद गीता का एक अंग्रेजी में एक कोई संस्तुति को, मतलब कोई ग्रंथ को आप मुझे रेकमेंड कीजिए। तो ऐसे वो पूछते हैं। तब तो ये भगवद्गीता यथारूप नहीं था तो, लेकिन ये इसको लिखा था द्रौपदी ने, नो इसके बाद में उन्होंने लिखा इसको, ये गीतोपनिषद करके, ये है ना इंट्रोडक्शन भूमिका है ना, और उस महिला को ही द्रौपदी जी ने ये दिया था एडिट करने के लिए। उसका नाम भी है श्रीमद भागवतम लिखे थे, लेकिन भगवद्गीता नहीं होता। और पढ़िए।
निस्संदेह अमेरिका में भगवद गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि तो भारत में भी कठिनाई से कोई प्रमाणित संस्करण मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता का यथार्थ के मर्म का स्पष्ट किए बिना अपने मत को व्यक्त किया है।
ओके, फिर चौथे अध्याय के 30 दूसरा श्लोक निकाले। वहां पर है ना, अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों ने निहित स्वार्थ की, वहां पर है ना, अतः जैसे ही
असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य अच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5,000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के कितने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारिक विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते।
तो पहला चीज क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद? असाधु, वो लोग असाधु है। असाधु का अर्थ है जो भगवान के भक्त नहीं है। भाष्यकारों ने निहित स्वार्थ से, अपने निजी स्वार्थ के कारण, ऐसे वो लगते हैं, सब लोग अपना अपना कला को दिखाना चाहते हैं। अपना कला दिखाने के लिए भगवद्गीता क्यों, उसको क्यों ले रहे हो? आज अपना दिखाओ ना अलग से। तुम भगवद्गीता के ऊपर ठीका लेके क्यों अपना कला दिखाना चाहते हो? तो या कोई कोई ऐसे है ना, वो योगा योगानंद, वो लोग, उन्होंने, उसने भी तीन ऐसे तीन भागों में वो गीता के ऊपर टीका लिखी है, तो लोग पढ़ते हैं उसको बहुत। अपना धारणा, अपना कुछ प्रचार करना चाहते हैं, उसके लिए वो भगवद्गीता को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, क्योंकि भगवद्गीता तो बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है, तो उसको उपयोग करके आप अपना कुछ बोल दिया तो आप भी प्रसिद्ध हो जाएंगे, तो ये निजी स्वार्थ है। और दूसरा प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। हाँ, ऐसा भगवद्गीता के नाम पर व्यापार चलाते हैं। हाँ बोलिए, आगे पढ़िए।
यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं, यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, केवल परमेश्वर के गुरु का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण का नितांत आवश्यकता थी जो परंपरा से प्राप्त हो,
है ना? हम चर्चा कर रहे थे ना, या उससे पहले उनको असुर क्यों बोल रहे प्रभुपाद, उसको भी प्रस्तुत सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर। असुर लोग ज्यादा क्या करते हैं, भगवान के जो क्योंकि असुरगण ईश्वर विश्वास नहीं करते, केवल परमेश्वर के गुणों का, गुणों का और प्रॉपर्टी इट इज ना, संपत्ति का इट शुड बी। तो ये सब कुछ भगवान कृष्ण का है, और भगवद्गीता भी भगवान कृष्ण का संपत्ति है, तो उसको क्या करेंगे लोग, सो लाभ उठाएंगे, लेकिन भगवान में विश्वास नहीं करेंगे। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद, आवश्यकता थी जो परंपरा में प्राप्त हो, तो उसका जरूरत था।
वास्तविक प्रयास किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवद्गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो ये समय का अपव्यय होगा।
भगवद्गीता यथारूप मानव के लिए महान वरदान है, ये है ना? कितने सारे ये पढ़ के कितने सारे लोग भगवान के भक्त बन गए ना, भगवद्गीता यथारूप को पढ़ के। हम तो पहले यही प्रचार करते हैं ना, हम लोग पहले यही वितरण करते हैं, पहले यही प्रचार करते हैं भगवद्गीता यथारूप को, तो इसलिए मानवता के लिए ये बहुत ही बड़ा वरदान है ये, तो इसको पढ़कर बहुत सारे लोगों ने भक्त बन गए। तो और अमुक खोलिए, अमुक प्रेफेस। कौन पढ़ेंगे? ललित कृष्ण। सर्वप्रथम मैंने भगवद्गीता यथारूप,
सर्वप्रथम मैंने भगवद्गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया है, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्या छूट गई थी।
तो प्रभुपाद जी ने तो लिख दिया, लेकिन जो पब्लिश करने वाले थे, जो प्रकाशित करने वाले थे, वो इतना मोटा ग्रंथ छपना नहीं चाहते थे, तो इसलिए उसको कट करना पड़ा। तो मैकमिलन कंपनी ने पहले छपा था ना, तो फिर उसके बाद में प्रभुपाद जी ने अपना ही भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट शुरू कर दिया। फिर ये ऐसे जैसे हमारे साथ हाथ में है, ऐसे उसको प्रकाशित किया गया। तो पहले जब वो प्रिंट किया गया था, उसमें बहुत सारा चीज काट दिया गया था, प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बिजनेस के पॉइंट में देखते हैं कितना लोग इसको, इतना मोटा बुक कोई खरीदेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, वो लोग ऐसे बिजनेस का देखते हैं, ठीक है। ठीक है, और
मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में दिव्यंतरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रमाणित तथा विविधतापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवत गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतः ज्ञान ही इस महान कृति को,
प्रभुपाद जी के ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हो गए पाश्चात्य देश में, बहुत सारे विद्वान लोग बड़े बड़े विश्वविद्यालय में भी उनके ग्रंथ पढ़ते थे, इसलिए वो लोगों ने जब फिर से बताया तो या
ज्ञान ही इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो मूल परंपरा पर व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके।
तो क्यों भगवद्गीता यथारूप को वो प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभुपाद? ताकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रगतिशील एवं पुष्ट, प्रोग्रेसिव एंड सॉलिडली, सॉलिड फाउंडेशन, यू नो, तो यही भगवद्गीता आधार है हमारे आंदोलन का, भगवद्गीता यथारूप। तो भगवद्गीता हमारा आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, ये भगवद्गीता यथारूप को प्रचार करने से हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा। कभी कभी आजकल भी ऐसा ही होता है ना, बहुत सारे भक्त सोच रहे हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, प्रचार के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, दूसरा चीज़ करना, कुछ मिक्स मिलाना, प्रवचन ऐसे करना, उसमें कुछ भी भगवद्गीता यथारूप से कुछ भी नहीं रहता है। भगवान कृष्ण का भी नाम लेते हैं हमारे भक्त लोग, गॉड 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 बोलते रहते हैं, क्रिश्चियन जैसा, ईसाई लोग जैसा, प्रभुपाद जी ऐसे नहीं किया, उनको सुझाव दिया गया था ना अंतर्राष्ट्रीय भगवान भावनामृत संघ नहीं, कृष्ण भावनामृत संघ बोले, वो कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि यथारूप में यही पर यही दिया गया। हम लोगों को यथारूप, भगवद्गीता यथारूप प्रचार करना चाहिए। पहला चीज है कि हम लोग हमारे व्यक्तिगत भक्ति के जीवन में प्रगति करने के लिए आधार क्या है, भगवद्गीता है, और प्रगति करने के लिए भगवद्गीता यथारूप बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको समझना। और ये कृष्ण पूरा ये आंदोलन के दृष्टिकोण से भी आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, उसका मूल आधार क्या है, भगवद्गीता यथारूप, और वो कैसे आगे बढ़ेगा, तो ये भगवद्गीता यथारूप को प्रचार करने से सब कुछ है इसमें। आपको कुछ इसको अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो सब कुछ है इसमें, आप किसी को भी प्रचार कर सकते हो, वैज्ञानिकों को प्रचार कर सकते हो, डॉक्टर्स को प्रचार कर सकते हो, इतिहासकारों को प्रचार कर सकते हो, किसी भी को चाहिए, राजनीतिज्ञों को प्रचार कर सकते हो भगवद्गीता से, कैसे एक राजा होना चाहिए, सब कुछ है इसमें। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़िए।
हमारा कृष्ण भावानंद मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवद गीता यथारूप पर आधारित है।
तो कृष्ण भावनामृत क्या है? प्रभुपाद जी अपने आंदोलन के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, तो उसका वो परिभाषा दे रहे हैं। आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणिक है। व्हाट इज दिस? तो ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणिक है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। सहज तथा दिव्य है क्योंकि यह भगवद्गीता यथारूप पर आधारित है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे आंदोलन हो सकते हैं, बहुत सारे संस्था हो सकते हैं, बहुत सारे आंदोलन हो सकते हैं। क्या बचाओ, पेड़ बचाओ आंदोलन, और कैसे क्या क्या आंदोलन, पानी बचाओ आंदोलन, व्हाट इज दैट, बेटी बचाओ आंदोलन। तो और ऐसे पाश्चात्य देश में भी कई सारे हैं, वेजिटेरियन मूवमेंट, सेव द वेल्स मूवमेंट, सो ऐसे कई सारे आंदोलन हो सकते हैं। तो लेकिन वो किसी ने बनाया वो सब चीज, ये हरे कृष्ण आंदोलन नहीं है, ये ऐतिहासिक है। क्योंकि ये आंदोलन भगवान कृष्ण के जो ज्ञान है 5,000 साल पूर्व जो भगवान कृष्ण ने दिया है उसके आधार पर है ये। और दूसरा चीज हमें समझना है इसे कि जब तक हमारे आंदोलन ये भगवद्गीता यथारूप के ऊपर आधारित नहीं है, तब तक वो मतलब जब प्रभुपाद जी शुरू किया था तब तो था, अभी भी होना चाहिए यथारूप के आधार पर। हम लोग इसको अध्ययन नहीं कर रहे, इसको हमारे जीवन में अनुशीलन नहीं कर रहे, इसको हम लोग प्रचार नहीं कर रहे भगवद्गीता यथारूप को। भगवद्गीता का यथारूप को प्रचार करने का मतलब क्या है? कृष्ण को शरणागत हो जाइए, ये भौतिक जगत दुखालयम और अशाश्वतम है, ये सब चीज हमें बोलना चाहिए लोगों को। आजकल बहुत सारा प्रोपेगेंडा है हमारे आंदोलन में भी कि वो मत बोलो, ये मत बोलो, ये मत बोलो, भगवान कृष्ण का नाम मत ले लो, ये करो, ऐसे है ना, है ना। तो और परंपरा को अनुशीलन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम अपना ही कुछ और बनाते हैं, बहुत सारा चीज बनाते हैं हम लोग, यथारूप हम लोग पालन नहीं करते हैं हम लोग, है ना। आजकल कीर्तन भी बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे कीर्तन, बहुत सारे यू नो गीत गाते हैं लोग, भक्त लोग है। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार हो, हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन हो, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र को छोड़कर और कुछ और ही गाते रहते हैं, तो वो यथारूप नहीं है। तो ये सब हम चीज जब तक नहीं रहेंगे तो हमारे आंदोलन कैसे रहेगा? दिव्य नहीं रहेगा, प्रामाणिक नहीं रहेगा, उस नेचुरल नहीं रहेगा, वो भी एक अपसंप्रदाय बन जाएगा। आप जानते हैं ना, बंगाल में कई सारे बंगाल में ही नहीं, पूरा दुनिया भर में कई सारे अपसंप्रदाय शुरू हो जाते हैं जब उसको बदल देते हैं हम लोग। तो कभी कभी प्रचार के नाम से उसको क्या दिया जाता है, बदल दिया जाता है। हम लोग ज्यादा प्रचार करना चाहते हैं लोगों को, लेकिन आप बदल दिया तो क्या प्रचार कर रहे हैं आप? भगवद्गीता यथारूप प्रचार कर रहे हैं, कुछ और प्रचार कर रहे हैं। हाँ प्रचार कर रहे होंगे, लेकिन क्या भगवद्गीता यथारूप को प्रचार कर रहे हैं, है ना? वो प्रश्न उठता है ना, ये प्रश्न उठना चाहिए ना, क्योंकि हमारे आंदोलन का प्रगति कैसे होगा यथारूप के ऊपर, क्योंकि इसके इसलिए प्रभुपाद जी ने यथारूप क्यों पर यथारूप उन्होंने प्रस्तुत किया। पढ़िए उसको, यह संपूर्ण जगत में
ये संपूर्ण जगत में विशेष विशेषतया जैन पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है।
ओके, ये आंदोलन के बारे में है, इसको छोड़िए। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे
है तो बस इतना है कि मैंने बिना किसी मिलावट
पढ़िए, उसको भी पढ़िए पहले से। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच में अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला
है। प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास ये कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमरीकी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि मैंने अमरीका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया है, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण है।
इसलिए ये क्या है, ऐतिहासिक है। भगवान कृष्ण ने कहिए इसको शुरू किया, क्योंकि ये आंदोलन कृष्ण भगवद गीता यथारूप के ऊपर आधारित है।
क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है तो वह मुझे नहीं, अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य
तो क्यों इतना यशस्वी है हुआ था, हरे कृष्ण आंदोलन क्यों यशस्वी हुआ था पाश्चात्य देश में, इस देश में, सब जगह क्यों यशस्वी हुआ था? क्योंकि वो भगवद्गीता यथारूप प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया। तो हमारा यश, सक्सेस ऑफ द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन भगवद्गीता एज इट इज। तो हमें इसको याद रखना चाहिए, जितना हम भगवद्गीता यथारूप प्रस्तुत करेंगे उतना हमारा यशस्वी है। ठीक है, मेरे
इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवद्गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं, किंतु भगवद्गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश मिशन को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिज्ञ दार्शनिक या विज्ञानी की संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना हो कृष्ण विषय ज्ञान अंश मात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं मन्मना भगवत भक्तो बंद्या जीवा नमस्कुरु, तो हम तथाकथित पंडितों की तरह ये नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण ब्रह्म पर ब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है।
जिसको हमला चर्चा किया है सामान्यतया
तथाकथित विद्वान राजनीतिक दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवद्गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवद्गीता का ऐसा अप्रमाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रमाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवद्गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवद्गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवद्धाम वापस नहीं जा
सकेंगे।
भगवद्गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य पद जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन करना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्म के दिन में एक बार अर्थात
ब्रह्मा के
एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव से भगवद गीता का प्रवचन,
तो हम लोग इसको कैसे समझना चाहिए, भगवद गीता को तब उसको पढ़े थे ना ये ठीक है पढ़िए।
भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव से भगवद गीता का प्रवचन किया था।
हमें वहां पर एक याद है आपको एक पॉइंट था कि भगवद गीता को हमें ऐतिहासिक घटना है करके स्वीकार करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक दंत कथा है ना। या
हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवद गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवद गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवद गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक भी होगा। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है क्योंकि ये जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है इसकी पूरी व्याख्या भगवद्गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आधुनिक लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भगवद्गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान हैं और जीवन की वास्तविक स्थितियाँ क्या हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। ये ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिर्गता शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से झगड़ा हुआ है। सौभाग्यवश कि भगवान का अंश रूप है, अतः उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, इससे वह खुद कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही कहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवद गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा।
तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवद गीता
हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवद्गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवद्गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे और यदि एक भी व्यक्ति सफल बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल बनाएंगे।
है ना, तो हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए। हम लोग भगवद गीता प्रचार कर रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, हमारे सुनने के लिए कोई ज़्यादा लोग नहीं आ रहा है, उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए। हम लोग हमारा यश क्या है, हम लोग भगवद गीता यथारूप को प्रस्तुत कर रहे हैं बस। आप बहुत ज़्यादा लोग आए लेकिन आप भगवद गीता यथारूप प्रचार नहीं किया, वो लोग समझे नहीं यथारूप, तो क्या फ़ायदा है, है ना। लेकिन ओके, तो अगला पॉइंट है कि भगवद गीता प्रचार। इक्कीसवां ना, गीता प्रचार और गीता भगवद गीता यथारूप प्रचार, थोड़ा हम लोग चर्चा कर दिया उसके बारे में। तो भगवद गीता में कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं इसके बारे में, प्रचार के बारे में, या इदं परमं गुह्यं मद भक्तेषु विधास्यति भक्तिं मही परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। तो भगवान कहते हैं कि या इदं परमं गुह्यं मद भक्तेषु विधास्यति, जो लोग इसको मेरे भक्त को प्रचार करते हैं, मेरे भक्तों को प्रचार करते हैं, तो भक्तेषु विधास्यति भक्तिं मही परां कृत्वा, सो वो भक्तिमयी पराम कृत्वा, पराभक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं या प्रेमा भक्ति को प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करके मामे वैश्यत्य संशयः, मेरे पास निश्चित ही वो लोग आते हैं, ऐसे कहते हैं। तो ये भगवद गीता प्रचार करने का लाभ है जो इसको, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया कि भक्तों को जो प्रचार करते हैं ऐसे, लेकिन हम लोगों ने पहले चर्चा किया ना कि मासूम लोग भी होते हैं, भक्त नहीं हो लेकिन मासूम लोग भी रहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर श्रद्धा होना चाहिए भगवान के ऊपर, उनको प्रचार करते हैं तो इसलिए हमारा जीवन का उद्देश्य है ये प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना और भगवान के पास वापस चले जाना, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम लोग आसानी से, भगवद गीता का प्रचार करके, इसलिए भगवद गीता प्रचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और प्रचार करते समय भगवद गीता ही प्रचार करना चाहिए, और कुछ किया तो हम लोग भगवान के पास नहीं जाएंगे, भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे, है ना। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो बहुत ही प्रामाणिक रूप से भगवद गीता यथारूप को प्रचार करने के लिए प्रयास करते हैं तो वो भक्ति में प्रगति करेंगे और उनको शुद्ध भक्ति का जीवन प्राप्त होगा, और ऐसे शुद्ध भक्ति के कारण वो इस जीवन के अंत में भगवद्धाम लौट के चले जाएंगे। तो पता है आप कहाँ पढ़ रहे हैं हम, तो 18वें अध्याय के 68वां श्लोक, फिर 59वां श्लोक में कहते हैं भगवान, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविताना च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। सो ऐसे कहते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः, पूरा मनुष्य समाज में उनके उनसे भी ज्यादा प्रिय और कोई नहीं है मुझे, तो भगवान को हमें प्रिय होना चाहिए ना, और भविष्य में भी भविताना च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भवि, भविष्य में भी ऐसा कोई नहीं मुझे प्रिय नहीं रहेगा जो भगवद गीता को प्रचार करते हैं। तो इसलिए देखिए भगवद गीता से भगवान कृष्ण का कितना आसक्ति है, भगवद गीता को कितना वो प्रेम करते हैं भगवान, इसको सुनाने के लिए वास्तव में एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसको सुनाने के लिए उन्होंने पूरा एक कुरुक्षेत्र युद्ध को उन्होंने व्यवस्थापना की भगवान कृष्ण। तो हम लोग यहाँ पर भगवद गीता चर्चा कर रहे हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे ना, है कि नहीं, वो ये देने के लिए वो स्वयं अपने धाम से यहाँ पर आते हैं और ये गीता या हम सब लोगों को देते हैं, लोगों को, मनुष्य को, मनुष्य नहीं पढ़ेंगे तो भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे, और जो इसको पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे वो लोग, इसको समझने के लिए हम कोशिश करेंगे तो और जो प्रचार करते हैं उनसे बहुत ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यथारूप हमें प्रचार करना चाहिए, लेकिन वो एक जिम्मेदारी है ना। सो तो फिर अगला भगवदगीता, ग्लोरीज ऑफ भगवदगीता, भगवदगीता का महत्व, भगवदगीता का महात्म्य। तो भगवदगीता का क्या महात्म्य है, कहां पर वर्णन हुआ है गीता महात्म्य? तो भूमिका के अंत में प्रभुपाद वर्णन करते हैं ना। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यपटे प्रयत पुमान विष्णु पदवमाप्नोति वयशोकादिवर्जितः गीताध्यायनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापाणि पूर्वजन्म कृतानि च। तो उसको पहले चर्चा करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयत पुमान विष्णु पदम आप्नोति वयशोकादिवर्जितः। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम, पुण्यम मतलब दिव्य है, ये भौतिक पुण्य नहीं है। पुण्य श्रवण कीर्तन, भागवत में भी वर्णन आता है ना, भगवान कृष्ण के जो कथा है क्या है, कृष्ण कथा क्या है, वो पुण्य श्रवण कीर्तन है, दिव्य है वो श्रवण करने के लिए। हमें आध्यात्मिक स्तर पर लेकर जाता है या आध्यात्मिक सुकृति हमें प्रदान करता है। तो ऑल ऑस्पिशियस, इसका अर्थ भी क्या है, पुण्य का अर्थ है ऑल ऑस्पिशियस, बहुत ही कल्याणकारी है ये। सो बहुत ही कल्याणकारी इसलिए है क्योंकि ये ज्ञान सबको कल्याण करेगा, और हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी ऑस्पिशियस इज व्हाट, कल्याणकारी और शुभ, शुभ उसमें से एक पॉइंट है, बहुत ही कल्याणकारी है ये, इट इज हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी, सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य है और सबको आनंद प्रदान करता है, सबको आकर्षित करता है और सबके अंदर अच्छे गुण प्रदान करता है। ये चार लक्षण है इसका, जो शुभ होना चाहिए उसमें उसका चार लक्षण होते हैं, ये चारों लक्षण। सो कल्याणकारी, सर्वोच्च कल्याणकारी और सबको आनंद प्रदान करने वाला, सबको आकर्षण करने वाला और सबके अंदर अच्छे गुण प्रदान करने वाला। तो वो दिव्य है, शुभ है और दिव्य है, पुण्य श्रवण कीर्तन श्रवण। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम य पठे प्रयत पुमान, तो पुण्य, पुण्य कर्म में तीन विभाग है ना, कर्म विकर्म और अकर्म। कर्म का अर्थ होता है पुण्य, तो पुण्य पाप और आध्यात्मिक कार्य, अकर्म मतलब आध्यात्मिक कार्य, भगवान कृष्ण से जो संबंधित है वो कार्य। यहाँ पर पुण्य, गीता शास्त्रम इदं पुण्यम, इसका अर्थ है कि वो दिव्य है वो, ये भौतिक पुण्य नहीं है, भौतिक कर्म नहीं है ये। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयत पुमान, सो ये आध्यात्मिक सुकृति को प्रदान करने वाला है। गीता शास्त्रम यः पठेत् प्रयत पुमान विष्णु पदवापनोति भय शोकादिवर्जितः। तो भय और शोक से मुक्त होकर भगवान कृष्ण को पास चले जाते हैं, जो गीता का अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करने का अर्थ होता है उसको श्रवण करना, मनन करना और अपने जीवन में पालन करना, वो अध्ययन करता है। गीता अध्ययन शीलस्य, वो बाद में आएगा, अगला श्लोक है। तो यहाँ पर भय शोकादि वर्जित, भय भय ये भौतिक जगत में रजोगुण के कारण होता है। हम लोग जब रजोगुण में रहते हैं भयभीत रहते हैं, हम लोग मेरे पास जो है वो खो जाएगा या मेरा क्या हो जाएगा भविष्य में, ऐसे हमारे भय रहता है। और शोक किसके लिए रहता है? तमोगुण के कारण रहता है। सो इस भौतिक जगत में ज्यादा से ज्यादा लोग इस रजत तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं, भय करते भय रहते हैं उनके अंदर और शोक शोचन शोचित करते रहते। सो जो हमारे पास नहीं है उसके लिए या है उसको खोने के भय रहता है, और जब खो जाता है तो उसके लिए हम लोग शोक करते हैं। तो या इसको आकांक्षा एंग्जाइटी भी कहते हैं ना यार, हैंकरिंग। तो भय शोकादि वर्जित, तो सब लोग यहाँ पर भयभीत है और शोक कर रहे हैं, डिप्रेस्ड। तो विष्णु पदवम आपनौति, भगवान विष्णु के या कृष्ण के पास चले जाते हैं। गीताध्यायनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। सो जो बहुत ही गंभीरता से प्रामाणिक पूर्वक जो गीता का अध्ययन करते हैं, यहाँ पर गीताध्ययनशीलस्य शील शील शब्द का शब्द आता है, उसको प्रभुपाद क्या कहते हैं? गंभीरता या प्रामाणिक दृष्टिकोण से। गंभीरता और प्रामाणिक दृष्टिकोण से कैसे, क्या अर्थ है उसका बोले? गंभीरता या प्रामाणिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने का क्या अर्थ है? जैसे हम लोगों ने चर्चा किया ना, कैसे भगवद गीता समझना चाहिए, बहुत सारा पॉइंट, 7-8 पॉइंट हम लोगों ने चर्चा किया ना, उसको अनुसरण करना चाहिए, वैसे हमें समझना चाहिए। उसका अर्थ है गंभीरता या प्रामाणिकता से अध्ययन करने का गीता अध्ययन। या दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति को शिष्य के पास शिष्य का क्या लक्षण होना चाहिए, वो सभी होना चाहिए। वो जिज्ञासु होना चाहिए और भगवान के भक्त होना चाहिए। या इसका अर्थ है कि गंभीरता या प्रामाणिकता का अर्थ है दो चीज हम लोगों ने पहले चर्चा, कौन इसको समझ सकते हैं, किसको ये बताना चाहिए, बोलना चाहिए भगवद गीता, हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, वो एक पॉइंट। और दूसरा है कैसे समझना चाहिए, ये दोनों इसमें आते हैं गंभीरता और प्रामाणिकता में। तो आप पढ़ लीजिए, लंबा है, ठीक है। गीता ध्यान एंड देन प्राणायाम परस्य नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। तो भगवान कृष्ण के प्राणायाम परस्य, मतलब भगवान कृष्ण के परामंस, यहाँ पर भगवान कृष्ण, उनके कृपा से क्या होता है? तो पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्म में किए हुए जो कर्म से व्यक्ति मुक्त हो जाता है या वो उनको लागू नहीं होते हैं। तो जो हमारे पूर्व किए हुए कर्म, वो चार स्तर पर हमें फल प्रदान करते हैं। उसको प्रारब्ध, प्रारब्ध अभी जो फल दे रहा है, अप्रारब्ध मतलब आगे देने वाला है, कूटम और बीजम। कूट मतलब सीडलिंग, बीज मतलब बीज, जानते हैं ना बीज। तो जैसे वृक्ष का उगने के समान है हमारे यू नो पाप कर्म के जो प्रक्रिया, तो कई सारे पाप अगले जीवन में आते हैं जो हम लोग अभी करते हैं या पूर्व जन्म में करते हैं, वो इस जीवन में हमें मिलते हैं। तो अप्रारब्ध अप्रारब्ध फूटा वो आगे के जीवन में मिलेगा। लेकिन पिछले जीवन में जो हम लोगों ने किया था प्रारब्ध प्रारब्ध कूट और बीज वो अभी मिल रहा है हम लोगों को। तो क्यों हमें ऐसे कर्म इसी जीवन में नहीं मिलते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है कि हर एक, जैसे अभी हम लोग उसका उदाहरण दे रहे थे, एक बीज के समान है। हर एक कर्म एक बीज के समान है। आप जानते होंगे जो खेती करते हैं या कोई किया हो या किसी को जानकारी है उनको सब पता चलता है कि अलग अलग बीज अलग अलग समय लेते हैं उस उगने के लिए, बड़ा होने के लिए। कोई तुरंत ही बड़ा हो जाता है, कोई लंबा समय लेते हैं। तो वैसे ही हर एक कर्म एक बीज के समान है। तो कोई तुरंत ही प्रक्रिया देते हैं, कोई लंबे समय के बाद में देते हैं। तो फिर इसलिए अगले जीवन में भी आ सकता है। सो और दूसरा कारण है कि हमें मृत्यु बीच में आ जाता है, है कि नहीं? बीच में मृत्यु आ जाता है। ये शरीर इतना ही समय समय से समय तक रहने के लिए उसका अवधि फिक्स रहता है। तो उसको हम कहते हैं ना, श्वास, जितना श्वास हम लेना चाहिए इस शरीर में उतना वो फिक्स रहता है, इसलिए वो भी बीच में आ जाता है। फिर जो इस जीवन में हो या फिर पहले जीवन में हो, लेकिन व्यक्ति तो वही है ना। ऐसा कोई कह सकते हैं कि जिस दिन मैंने चोरी किया था उस दिन मैं दूसरा कपड़ा पहना था इसलिए मुझे पकड़ो नहीं, ऐसे कोई बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, वही व्यक्ति है ना, हम वही व्यक्ति है। इसलिए हमें कभी कोई भी जीवन में ये कर्म आ सकते हैं। और चौथा कारण है वो कर्म को भुगतने के लिए भी वो एक जरूरी वातावरण का जरूरत होता है। जैसे उदाहरण तौर पर एक शिकारी ने वो एक पक्षी के अनुपस्थिति में ही, वो पक्षी और उसके पत्नी दोनों थे, उनके अनुपस्थिति में ही 100 क्या है पक्षी उसके उनके बच्चों को मार दिया था। फिर वो कर्म करने का जो फल है उसको कब मिलेगा कि वो भी देवराल मेल बर्ड्स वो शिकारी को 50 जन्म लगे वो पुण्य प्राप्त करने के लिए और 100 बच्चा जन्म देने के लिए। तो फिर उसने 100 बच्चा जन्म ले दिया उस पुण्य, विशेष करके एक बच्चा प्रदान करने के लिए, बच्चा जन्म देने के लिए बहुत सारा पुण्य का जरूरत होता है। तो 100 बच्चा जन्म देने के लिए बहुत सारा पुण्य का जरूरत होता है ना। तो फिर 100 बच्चा 50 जन्म के बाद उसने कर्म किया, उसने वो पक्षियों को मारा था, उसके 50 जन्म के बाद उसने 100 बच्चे को जन्म दिया, जो क्या बोलते हैं उसको, मेल नर बच्चे को जन्म दिया उसने। नर बच्चे को जन्म देने के बाद उसके उपस्थिति में वो 100 बच्चों को हत्या किया गया। कौन है पता है? धृतराष्ट्र, है ना। तो मतलब कर्म को भोगतने के लिए उसके लिए जरूरी वातावरण का जरूरत होता है, इसलिए अगले जीवन में भी आ सकते हैं, है ना। ये भी तो ये भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र को बताया था। भगवान धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा क्यों मेरे उपस्थिति में, जनरली उस समय पर ऐसा नहीं होता है कि पिता के उपस्थिति में बच्चा मरता है, ऐसे होता नहीं था वो। तो इसलिए धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, फिर भगवान कृष्ण ने उसके पूर्व इतिहास बताया, 50 साल का इतिहास बताया, 50 जीवन का होती है इतिहास। तो यहाँ पर जो गीता का अध्ययन करते हैं ये सभी कितने खतरनाक हो सकते हैं ना, हमारे पूर्व जन्म किए हुए कर्म, तो उससे मुक्त हो जाते हैं, ऐसे भगवान बोलते हैं। फिर मला निर्मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसारामलनाशनम। तो मला निर्मोचनम पुंसा जलस्नानम दिने दिने, हम लोग हर रोज स्नान करके क्या करते हैं, हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं। तो सकृत गीतामृत स्नानम संसार अमलनाशनम, जो गीतामृत को गीतामृत में स्नान करते हैं, ये भौतिक जगत के जो संसार मल है उससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। तो पहला चीज क्या है यहाँ पर, भगवद गीता ये अमृत है, गीतामृत। इस जगत में जो अमृत है वो तथाकथित अमृत है। तो ऊंचे लोगों में ना वो लोग अमृत पीते हैं, लेकिन वो अमृत वास्तविक अमृत नहीं है, वो तथाकथित अमृत है, सिर्फ नाम के पुष्पिताम वाचम कहते हैं भगवान भगवद्गीता में। ऐसे आकर्षित करने के लिए, सभी को ऊंचे लोग जाने के लिए आकर्षित करने के लिए वो बताते हैं। ऐसे नहीं कि ऊंचे लोगों में लोग मरते नहीं है, वो भी मरते हैं, अमृत पीने के बाद भी मरते हैं ना देवी देवता लोग भी। तो ये तथाकथित अमृत है, ऐसा नहीं कि वहां पर लंबे शाश्वत जीवन होता है। हमारे तुलना की दृष्टि से लंबे हो सकता है, लेकिन शाश्वत नहीं है वहां पर भी। आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते। तो ऊपर के ब्रह्म लोक से नीचे के लोक तक सिर्फ जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, पुनरावर्तिनो अर्जुन, या वहां से भी उनको वापिस आना पड़ता है। तो इसलिए वहां पर जीवन शाश्वत नहीं है, वो अमृत नहीं है। लेकिन गीतामृत जो भगवद्गीता को में स्नान करते हैं, ये संसार के मल से शुद्ध होकर हम लोग हर रोज शरीर को शुद्ध करते हैं। लेकिन ये शरीर ही आत्मा के लिए आए मल है, ये समझ में आ रहा है। शरीर में क्या है, सिर्फ मल ही है, आत्मा शुद्ध है। और दूसरा है भौतिक जगत मल है ये। चैतन्य महाप्रभु भी उसको किससे तुलना किए, वो तो मल त्याग करने का एक इंद्र, भौतिक जगत मतलब इंद्र तृप्ति, इंद्र तृप्ति को वो एक मल त्याग करने का गड्ढे को तुलना करते हैं। पहले जमाने में गड्ढे में मल त्यागते थे, अभी आजकल बहुत डेकोरेटेड गड्ढे में गड्ढे मल त्याग करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले, तुम्हारे माता पिता मल के गड्ढे में तैरने वाले कीड़े हैं, ऐसे बोले। हालांकि वो लोग भी भक्त थे, वैष्णव थे। चैतन्य महाप्रभु देखो कैसे निंदा कर रहे हैं, अच्छी तरह से धुलाई कर दिया ना। तो इंद्र तृप्ति, क्योंकि वो थोड़ा इंद्र तृप्ति के लिए आसक्त थे, वो ऐसे होता है। ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग ऐसे होते हैं, वो भक्त होते हैं लेकिन इंद्र तृप्ति से भी आसक्त रहते हैं, मल के कीड़े है वो सब। सब दिखाते हैं मैं भी भक्त हूं करके। तो सभी लोग वानप्रस्थ और संन्यास लेना चाहिए, नहीं तो मल के कीड़े ही रहेंगे जीवन भर, घर में रहना है ना मल के कीड़े। सो ये शरीर क्या है, मल है, और भौतिक जगत भी मल है। तो उससे हम लोग संसार मल नाशन, तो इसका अर्थ है गीतामृत में स्नान करने के बाद इंद्र तृप्ति को छोड़ देना चाहिए, मुक्त हो जाना चाहिए। गीता सुगीत कर्तव्य किम मन्ने शास्त्र विस्तरे स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मस्मृत। गीता सुगीत कर्तव्य किम मन्ने, क्योंकि ये भगवान पद्मनाभ उनके मुख से निकला है, मुख पद्मस्मृत। तो क्यों अन्य शास्त्र का क्या जरूरत है, ऐसे भागवत के पहले भी ऐसे वर्णन हुआ है ना, धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परम निर्मत्सराणाम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापोत्रयोन्मूलम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर। तो ये महामुनि ने लिखा था, व्यासदेव ने, और अन्य शास्त्र का क्या जरूरत है ऐसे। तो दोनों एक ही है, भगवद्गीता और भागवतम, लेकिन भगवद्गीता पहले बाद में भागवतम, है ना। तो और अन्य शास्त्र क्या क्या जरूरत है, गीता भागवत ही काफी है, इतना पढ़ लिया तो काफी है, है ना। कल कोई पूछ रहे थे संस्कृत के बारे में, गीता भागवत पढ़ लिया तो काफी है आज संस्कृत क्या पढ़ेंगे लोग लेकिन संस्कृत से भी ये सब समझ सकते हैं अच्छी तरह से, गहराई से, उसके लिए हो सकता है। तो आजकल विशेष करके कलयुग में लोग बोल पूछेंगे, मैं बार बार वो बताता बताया था ना, पूछेंगे मैं चार वेद पढ़ना चाहता हूँ। उस दिन मैं बता रहा था चार वेद पढ़ने का क्या है, उनको पता नहीं है क्या बोल रहे हो लोग। तो गीता पढ़ो पहले, बाद में देखेंगे। ये श्लोक बोले उनको, गीता सुगीत कर्तव्य यह स्वयं पद्मनाभस्य। यहाँ पर स्वयं शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी वेद शास्त्र स्वयं पद्मनाभ से आए हैं, ये भी भगवद्गीता भी उनसे ही आया है, इसलिए अन्य कोई शास्त्र का क्या जरूरत है ऐसे। सुभारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्रादि निस्पृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्मन विद्यते। तो ये भगवान विष्णु के मुख से आने के कारण भारतामृत सर्वस्वं, महाभारत का सार है ये। सो मध्वाचार्य भी कहते हैं एक जगह पर कि सभी वेद शास्त्रों में महाभारत श्रेष्ठ है, और महाभारत में दो विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, भगवद्गीता और विष्णु सहस्रनाम, ऐसे कहते हैं। तो इसका अर्थ है सभी वेद शास्त्रों में महाभारत श्रेष्ठ है, इसका अर्थ है वो धर्म शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ है महाभारत। तो इसे यहाँ पर भी महाभारतामृत सर्वस्व, तो ये महाभारत का सार अमृत है ये। तो महाभारत पढ़ के जो भी हम जानना चाहते हैं ये इसमें है, इसको पढ़ने से काफी है, ठीक है। तो आप जानते हैं ना, जब महाभारत को सभी वेद शास्त्रों को लिखा उन्होंने, तो फिर स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम उनके लिए ये महाभारत लिख दिया, उसमें भगवद्गीता उन्होंने रख दिया। तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब कथा सुनना चाहते हैं, कुछ स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ भगवद्गीता भी वो लोग सुने, ऐसे उन्होंने लिख दिया। लेकिन आजकल इतना प्रगति हो गया लोगों का बुद्धि कि ये भगवद्गीता भी नहीं समझ पा रहे हैं, जो शूद्र द्विज बंधुओं के लिए था। विष्णु वक्राद विनिस्मृतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा के पानी को पीते हैं उनका मुक्ति हो जाता है, और गीता का जो गंगा है उसको पीने से क्या होगा, ऐसे प्रभुपाद यहाँ पर एक रिटोरिकल क्वेश्चन प्रश्न पूछ रहे हैं। और प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि हालांकि गंगा भी भगवान से ही निकलती है, लेकिन गंगा भगवान के चरणों से निकलती है, लेकिन भगवद्गीता उनके मुख से निकलती है, मुखारविंद से। तो भगवान के चरण और मुख में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान परिपूर्ण है और शुद्ध है पूरी तरह से, फिर भी हम लोग तुलना कर सकते हैं। ऐसे होता है ना, बहुत सारे जो कलकत्ता में वगैरह जहाँ पर गंगा बहती है, बहुत सारे ऐसे वैश्याएं भी वहाँ पर स्नान गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन उनके वैश्यावृत्ति वो छुटती नहीं है। लेकिन जो भगवद्गीता सुनेंगे वो लोग तुरंत ही इससे मुक्त हो जाएंगे। तो ये अंतर है, इसका ये मतलब ये नहीं है कि हम गंगा जी का ये कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि ये भगवद्गीता उससे भी श्रेष्ठ है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना कार्तो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो हम लोगों ने इसको चर्चा किया है कि कैसे सभी उपनिषदों का सार है भगवद्गीता, गीतोपनिषद, और सभी यहाँ पर सभी उपनिषदों को गाय के गाय से तुलना किया गया है। तो और भगवान गोपाल है, और गोचरण गाय को वो क्या करते हैं, वो दोहन करते हैं। सो दोहन करते हैं, वो गाय का सार क्या है, वो दूध है। तो वैसे ही सभी उपनिषदों का सार ये भगवद गीता है। और अर्जुन जैसे बछड़े उसको पीते हैं, और अन्य भी सुधीर भोक्ता, जो सुधीर धीर धीर शब्द का अर्थ वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषहेत धीरः सर्वम अपि मां पृथ्वीं सुशिक्षात। वेगों के ऊपर जो नियंत्रण किए उनको धीर कहते हैं। तो वो लोग इसको पिएंगे, जब तक हम लोग इंद्रियों के ऊपर हमारा काबू नहीं रहता सब रुचि नहीं आएगा भगवद गीता पढ़ने के। इसलिए हम लोग भागते रहते हैं ना इधर उधर इधर उधर इधर। तो तभी हम लोग इसको समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं या पी सकते हैं उसको, इस अमृत को, दुग्धम गीतामृतम। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। कि एकं शास्त्रं, बहुत सारे शास्त्र है, तो कौन सा हम लोग पढ़ेंगे, काफी है एक भगवद गीता। गीता एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं एको देवो देव देवकी पुत्र एव च। तो क्यों बहुत सारे भगवान को, बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा करना चाहिए, बस भगवान कृष्ण काफी है। से कहा गया है ना, थरोर्यता मूल निषेचन तृप्यन्ति स्कंद भुजोपशाख प्राणोपहारश्च यतेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरम अच्युते च। तो भगवान कृष्ण को पूजा करने से क्या हो जाता है, आराधना करने से, जैसे शरीर को या हमारे पेट को अन्न को अन्न प्रदान करने से, या जो वृक्ष के मूल को पानी देने के समान है, तो सबको पानी पहुंच जाएगा, सबको शक्ति पहुंच जाएगा, अन्न का शक्ति। तो ऐसे ही एको देवो देव की पुत्र एव एको मंत्रस्थस्य नामानि यानि। तो बहुत सारे मंत्र का क्या जरूरत है, लोग वो मंत्र ये मंत्र, सभी तथाकथित गुरु होते हैं, अलग अलग मंत्र देते हैं अपने शिष्यों को, क्या जरूरत है, भगवान का नाम उच्चारण करो काफी है बस। सो कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, शास्त्रों में भी अलग अलग कर्म का बताया गया है, लेकिन सभी कर्म क्या होना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, वही एक ही कर्म है। तो आजकल दुनिया में लोग वो भी चर्चा करते हैं ना, वो लोग दुनिया में चर्चा करते हैं लोग कि वी वांट वन रिलीजन वन गॉड वन फ्लैग विश्व भ्रातृत्व यूनिवर्सल ब्रदरहुड एकता समानता, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर लव पीस हारमोनी ऐसे बात करते रहते। तो जब तक भगवद गीता को स्वीकार नहीं करेंगे ये सब नहीं मिलने वाला है, सिर्फ बातें करेंगे ऐसे जैसे है ना। तो बहुत सारे लामा है मदर है वो लोग है, बहुत सारे है वो लोग, वो भी सब उनको शांति नोबेल शांति पारी क्या पुरस्कार मिलता है, लेकिन वो पुरस्कार लेके भी क्या करने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए ये स्वीकार करना चाहिए तभी होगा। दूसरे शब्दों में हम लोग भगवद गीता प्रचार करेंगे तो ये सब चीज आ जाएंगे, ठीक है, लोग स्वीकार करेंगे इसे क्योंकि ये चाहते हैं लोग। तो और हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और प्रश्न भी बाद में लेंगे क्योंकि नाव चार हो गया। ये गीता महात्म्य के ऊपर और चर्चा करने वाले हैं। Thank you.